आज हम मध्यकालीन भारत को कुछ अलग नजरों से देखने और समझने की कोशिश करेंगे।
और ये नजरें हैं उन यात्रियों की जो सदियों पहले यहाँ आए थे।
हम बात करेंगे एल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांस्वा बर्नियर और कुछ चीनी यात्रियों की, उनके अनुभवों पर गौर करेंगे।
बिल्कुल, आज का हमारा मकसद इन यात्रियों के वृत्तांतों मतलब उनके अकाउंट्स पर आधारित कुछ जरूरी सवालों को समझना है।
और हम हर सवाल को पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसे आसान हिंदी में पॉइंट्स में समझेंगे।
हाँ, और ये चर्चा एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन यात्रियों ने भारत को कैसा देखा। पहला सवाल एल बिरूनी से जुड़ा है। क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एल बिरूनीज किताब उल हिंद।
देखिए, एल बिरूनी की किताब उल हिंद की तीन मुख्य विशेषताएं थीं।
तीन? कौन कौन सी?
पहली थी उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना। ये अरबी भाषा में लिखी एक बहुत बहुत बड़ी किताब है। इसमें 80 चैप्टर्स हैं।
80 चैप्टर्स? और टॉपिक्स क्या थे?
धर्म, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज, विज्ञान, मतलब सब कुछ। दूसरी खासियत थी उनकी मेथड यानी पद्धति।
मेथड?
हाँ, अल बिरूनी ने एक तरह का ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर अपनाया। हर चैप्टर एक सवाल से शुरू होता है।
अच्छा।
फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और आखिर में उसकी तुलना दूसरी संस्कृतियों से की जाती है।
ये तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। और तीसरी चीज?
तीसरी थी उनकी स्टाइल यानी शैली। भाषा बहुत सिंपल और क्लियर थी। देखिए, अल बिरूनी एक मैथमेटिशियन थे तो उनका लिखने का तरीका भी बहुत एनालिटिकल था, तर्क पर आधारित।
तो अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें?
हाँ, तो ये 3 मार्क्स के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। इसमें स्ट्रक्चर, मेथड और स्टाइल, इन 3 पॉइंट्स को समझाना होगा।
ठीक है, तो रिमेम्बर दिस, किताब का नाम किताब उल हिंद,
लेखक अल बिरूनी, भाषा अरबिक, चैप्टर्स 80 और तरीका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब सवाल, विवरण और फिर तुलना।
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये चीनी यात्रियों से जुड़ा है। क्वेश्चन 25, एग्जामिन द व्यूज ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स ऑन द पीपल कंसिडर्ड आउटसाइड द वर्णा सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया।
जी, तो चीनी बौद्ध यात्री जैसे फैक्सियान जो 5th सेंचुरी CE में आए थे,
और ज़्वांजांग जो 7th सेंचुरी में आए,
बिल्कुल, इन दोनों ने अछूतों या अनटचेबल्स के बारे में लिखा है।
फैक्सियान ने क्या लिखा था?
फैक्सियान ने लिखा कि इन लोगों को, जिन्हें वो चंडाल कहते हैं, शहर के बाहर रहना पड़ता था।
शहर के बाहर?
हाँ, और जब वे शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा बजाना पड़ता था।
वो क्यों?
ताकि लोग उनकी पोल्यूटिंग प्रेजेंस से मतलब उनके संपर्क से बच सकें।
ये तो बहुत दुखद है। और ज़्वांजांग, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ देखा?
हाँ, ज़्वांजांग ने भी देखा कि जल्लाद, एग्जीक्यूशनर्स और मैला ढोने वाले स्कैवेंजर्स को शहर के बाहर अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से?
ये 3 मार्क्स का सवाल है। इसमें फाइयान और श्वांगजांग दोनों का जिक्र करना जरूरी है।
तो रिमेम्बर दिस, नाम है फाइयान 5वीं सदी और श्वांगजांग 7वीं सदी। और मुख्य बातें, शहर के बाहर रहना और चेतावनी के लिए आवाज करना। अच्छा, अब फिर से अल बिरूनी पर आते हैं। सवाल है क्वेश्चन 26, ट्रैवलर्स ऑफन कंपेयर्ड व्हाट दे सॉ इन द सब कॉन्टिनेंट विद प्रैक्टिसेस विद विच दे वर फेमिलियर। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल बिरूनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट।
देखिए, इस सवाल का मतलब है कि अल बिरूनी ने भारत की चीजों को समझाने के लिए उनकी तुलना दूसरी जगहों से कैसे की।
उनका कंपैरेटिव अप्रोच?
एग्जैक्टली, जैसे भारत के कास्ट सिस्टम को समझाने के लिए।
हाँ।
उन्होंने इसकी तुलना प्राचीन फारस यानी एंशिएंट पर्शिया के 4 सामाजिक वर्गों से की।
अच्छा, फारस में भी ऐसा था?
हाँ, वहां भी योद्धा, पुजारी, चिकित्सक और कारीगर ऐसे 4 वर्ग थे। इस तुलना से उनके पाठकों को भारत की वर्ण व्यवस्था को समझने में आसानी हुई।
और उन्होंने इस्लाम से भी इसकी तुलना की थी, है ना?
बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बताया कि इस्लाम में सभी लोग बराबर माने जाते हैं, उनमें फर्क सिर्फ उनकी धर्मनिष्ठा यानी पायटी से होता है,
जो कि भारत की जन्म आधारित जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग था।
एकदम अलग। और एक और चीज थी जिसका उन्होंने विरोध किया, वो थी पोल्यूशन या अपवित्रता की अवधारणा।
उन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया?
बिल्कुल नहीं, उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रकृति के नियमों, लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ है। जैसे सूरज हवा को साफ करता है, वैसे ही हर अपवित्र चीज वापस पवित्र होने की कोशिश करती है।
तो ये एक बड़ा सवाल हो सकता है एग्जाम के लिए।
हाँ, ये 8 मार्क्स का सवाल बन सकता है। इसमें पर्शिया से तुलना, इस्लाम से भिन्नता और पॉल्यूशन की अवधारणा का विरोध, तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझाना होगा।
ठीक है, तो रिमेंबर दिस, कीवर्ड्स हैं कंपैरेटिव अप्रोच, पर्शिया, इस्लाम, डिसअप्रूवल ऑफ पॉल्यूशन और लॉज ऑफ नेचर। अल-बिरूनी को भारत को समझने में कुछ मुश्किलें भी तो आई थी।
क्वेश्चन 28। What were the barriers discussed by Al-Biruni that obstructed him in understanding India?
हाँ, उन्होंने 3 मुख्य बाधाओं मतलब बैरियर्स की पहचान की।
पहली क्या थी?
सबसे पहली लैंग्वेज। संस्कृत एक बहुत मुश्किल भाषा थी, अरबी और फारसी से बहुत अलग।
तो ट्रांसलेशन में दिक्कत होती होगी?
बहुत। विचारों का सही सही अनुवाद करना एक चुनौती थी। दूसरी बाधा थी रिलीजियस डिफरेंसेस।
यहाँ के धार्मिक विश्वास और प्रथाएं अलग थी।
बिल्कुल। और तीसरी थी इंसुलैरिटी, यानी अलगाव।
अलगाव मतलब स्थानीय लोग उनसे मिलते जुलते नहीं थे।
हाँ, खासकर ब्राह्मण, वो बाहर के लोगों पर शक करते थे और ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। अल-बिरूनी ने इसे सेल्फ अब्सॉर्प्शन कहा।
तो एग्जाम पॉइंट के लिए ये 3 मार्क्स का सीधा सवाल है। तीनों बैरियर्स याद रखने हैं, लैंग्वेज, रिलीजियस डिफरेंसेस और इंसुलैरिटी।
रिमेंबर दिस, 3 बाधाएं, संस्कृत, धर्म में अंतर और स्थानीय लोगों का अलगाव। चलिए अब 14वीं शताब्दी के यात्री इब्न बतूता की बात करते हैं। सवाल है क्वेश्चन 27। इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट।
इब्न बतूता के अनुसार भारत के शहर वाकई अवसरों से भरे हुए थे।
ऐसा क्यों लगा उन्हें?
कई कारण थे। पहला तो ये कि शहर बहुत समृद्ध थे। दिल्ली जैसे शहर विशाल, घनी आबादी वाले और शानदार थे।
और वहाँ के बाजार?
बाजार सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थे, वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वहाँ संगीतकार, नर्तक सब होते थे।
और इन शहरों की समृद्धि का आधार क्या था?
समृद्ध कृषि। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि किसान साल में 2 फसलें उड़ाते थे। इसी एग्रीकल्चरल सरप्लस से शहरों का पेट भरता था।
और व्यापार का क्या?
व्यापार तो बहुत फैला हुआ था। भारतीय सामान जैसे कपास, मलमल और रेशम की दुनिया भर में बहुत मांग थी। ये शहर एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से जुड़े थे।
इतने बड़े व्यापार के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा रहा होगा।
बहुत ही कुशल। इब्न बतूता यहाँ की डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम से बहुत प्रभावित हुए।
अच्छा।
हाँ, इसे उलूक जो हॉर्स पोस्ट था और दावा जो फुट पोस्ट था कहते थे। ये इतनी तेज थी कि व्यापारी दूर दराज तक सूचना और क्रेडिट आसानी से भेज सकते थे।
तो एग्जाम पॉइंट के लिए ये एक 8 मार्क्स का सवाल हो सकता है।
बिल्कुल। इसमें शहरों की समृद्धि, बाजार, कृषि, व्यापार और संचार व्यवस्था, इन सभी पॉइंट्स को शामिल करना होगा।
तो रिमेंबर दिस, कीवर्ड्स हैं दिल्ली, बाजार्स, एग्रीकल्चरल सरप्लस, ग्लोबल ट्रेड, उलूक हॉर्स पोस्ट और दवा फुट पोस्ट। इब्न बतूता ने दास प्रथा यानी स्लेवरी के बारे में भी लिखा था। क्वेश्चन 29। एनालाइज द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता।
हाँ, उनके लेखों से स्लेवरी के साफ सबूत मिलते हैं।
जैसे कि
पहली बात, दासों को बाजारों में खुलेआम बेचा जाता था। उन्हें एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह देखा जाता था।
और उन्हें तोहफे में भी दिया जाता था।
हाँ, तोहफे के रूप में देना लेना आम बात थी। दूसरी बात, सुल्तान खुद दासों का इस्तेमाल करते थे।
किस तरह से?
महिला दासों को संगीतकार और नर्तकी के तौर पर, और अपने अमीरों नोबल्स पर नजर रखने के लिए जासूस के तौर पर भी।
जासूस के तौर पर
और घरेलू काम।
हाँ, तीसरा पॉइंट यही है, दासों का इस्तेमाल घरेलू कामों और लोगों को पालकी, पलंक्विंस में ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर होता था।
तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से 3 मार्क्स के लिए ये 3 पॉइंट्स काफी हैं।
बिल्कुल। बाजार में बिक्री, सुल्तान द्वारा उपयोग और घरेलू काम।
रिमेंबर दिस, दासों को बेचा जाता था, तोहफे में दिया जाता था और सुल्तान द्वारा जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं 17वीं सदी के फ्रांसुआ बर्नियर पर। क्वेश्चन 30। एग्जामिन व्हाई बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल टाउन्स एज द कैंप टाउन्स। बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन्स कहा।
हाँ।
और इसके पीछे उनका एक खास तर्क था।
क्या तर्क था?
उनका मानना था कि इन शहरों का अस्तित्व पूरी तरह से शाही दरबार, इंपीरियल कोर्ट पर निर्भर था।
मतलब जब तक दरबार है तब तक शहर है।
बिल्कुल, जब शाही दरबार शहर में आता था तो शहर फलते फूलते थे,
हाँ।
और जैसे ही दरबार चला जाता वे तेजी से उजड़ जाते थे।
उनके हिसाब से इनकी कोई स्थायी नींव नहीं थी।
हाँ, यूरोप के शहरों की तरह इनकी कोई परमानेंट सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं थी।
एग्जाम्स पॉइंट, ये 3 मार्क्स का एक अच्छा सवाल है।
हाँ, और इसमें मुख्य बात शाही दरबार पर निर्भरता है।
तो रिमेम्बर दिस, बर्निया, मुगल टाउन्स, कैंप टाउन्स और इंपीरियल कोर्ट पर निर्भरता। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन 31, डिस्क्राइब बर्निया'स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थियोरिस्ट्स।
ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ। इसके 2 हिस्से हैं।
पहला,
बर्नियर का विवरण।
उन्होंने लैंड ओनरशिप के बारे में क्या कहा?
बर्नियर का मानना था कि भारत में जमीन पर निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की अवधारणा थी ही नहीं। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी।
तो उनके हिसाब से मालिक कौन था?
उनके हिसाब से सारी जमीन का मालिक राजा था, जो इसे अपने अमीरों यानी जागीरदार में बांट देता था।
और इसका नतीजा क्या हुआ?
नतीजा विनाशकारी था। चूंकि अमीर इस जमीन को अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, तो वो जमीन में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। इससे कृषि बर्बाद हो गई और किसान तबाह हो गए।
और सवाल का दूसरा हिस्सा, इसका पश्चिमी विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के विचारों का उपयोग ओरिएंटल डेस्पोटिज्म यानी पूर्वी निरंकुशता का सिद्धांत बनाने के लिए किया।
अच्छा।
और बाद में कार्ल मार्क्स ने इसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में विकसित किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि एशिया में राज्य ही सारा सरप्रेस ले लेता है, जिससे समाज स्थिर मतलब स्टैग्नेंट हो जाता है।
तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये 8 मार्क्स का एक बहुत बड़ा सवाल है।
जी हाँ, इसमें बर्निया के लैंड ओनरशिप के विवरण और मॉन्टेस्क्यू और मार्क्स पर उसके प्रभाव दोनों को समझाना होगा।
तो रिमेम्बर दिस, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्राउन ओनरशिप, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म मॉन्टेस्क्यू और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स। हमारा आखिरी सवाल महिलाओं की स्थिति पर है, क्वेश्चन 32, डिस्क्राइब द पर्सपेक्टिव ऑफ इबन बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
दोनों ने महिलाओं के बारे में लिखा, लेकिन उनका फोकस बहुत अलग था।
पहले इबन बतूता की बात करते हैं।
इबन बतूता ने महिलाओं को मुख्य रूप से दास्ता, स्लेवरी के संदर्भ में देखा।
उन्होंने बताया कि महिला दासों को बाजारों में बेचा जाता था,
तोहफे में दिया जाता था।
हाँ, और वे सुल्तान के लिए संगीतकार, नर्तकी और जासूस के रूप में काम करती थी।
और बर्नियर का फोकस किस पर था?
बर्नियर का फोकस सती प्रथा पर था। वो प्रैक्टिस ऑफ सती को देखकर बहुत परेशान थे।
उन्होंने उसका विवरण कैसे दिया है? उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे बाल विधवाओं को ब्राह्मणों द्वारा मजबूर करके या ब्रेन वॉश करके उनके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था।
तो वो इसे समाज के एक बर्बरता के तौर पर देखते थे।
बिल्कुल, वो इसे भारतीय समाज की बारबेरिक नेचर का प्रतीक मानते थे।
तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये एक कंपैरेटिव सवाल है 8 मार्क्स के लिए।
हाँ, इब्न बतूता का फोकस महिला दासों पर और बर्नियर का फोकस सती प्रथा पर, इस अंतर को साफ साफ बताना है।
रिमेम्बर दिस, इब्न बतूता फीमेल स्लेव्स, बर्नियर सती प्रैक्टिस।
तो आज हमने देखा कि कैसे अलबिरूनी एक विश्लेषक की तरह, इब्न बतूता शहरी जीवन के एक उत्सुक पर्यवेक्षक की तरह और बर्नियर एक आलोचक की तरह भारत को देखते हैं।
हाँ, हर यात्री का अपना एक नजरिया था, अपना एक चश्मा था।
इन यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांतों को पढ़ते समय यह सोचना कितना दिलचस्प है कि उन्होंने जो देखा उसे अपने समाज और अपनी मान्यताओं के चश्मे से कैसे समझा।
बिल्कुल, और ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी जब हम किसी नई जगह या संस्कृति को देखते हैं तो हम भी ऐसा ही नहीं करते।
सही बात है।
और क्या हमारी अपनी धारणाएं हमारी समझ को सीमित करती हैं या उसे विस्तृत करती हैं? ये सोचने वाली बात है।